पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 18 ओम सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वैच्छायाणम् नमो लोये सर्वसाहूनम् तत्त्वं सल्लक्षणिकम् सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धम् तस्मादनादिनिधनम् स्वसहायम् निर्विकल्पम् च। यह ग्रंथ राशि पंचाध्यायी है और अभी हम पृष्ठ संख्या 50 पर आ गए हैं। 218 तक हमने पढ़े थे श्लोक, 219 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ कल शंका पूछी गई थी कि उत्पाद और व्यय ये तो अंशात्मक अंश रूप है तो भले हो, परंतु द्रव्य तो सदा रहता है, तो उसको अंश रूप क्यों कह रहे हो? ये उनका प्रश्न था। अब उसका समाधान हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, शंका फिर से देखो। शंकाकार की शंका यह है, यहाँ पहले क्या बताया था, उत्पाद द्रव्य तीनों ही अंशात्मक है, अंश स्वरूप है, अवस्थाएं है। उसके लिए अभी प्रश्न ये पूछा जा रहा है, उत्पाद और व्यय तो ठीक है अंश है, परंतु द्रव्य तो हमेशा रहता है, वो अंश क्यों कहे उसको? ये प्रश्न है। अब उसका समाधान चलेगा। 219 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके लिए 50 नंबर का पृष्ठ 50 देखो, हम श्लोक पढ़ते हैं तब तक। नैवं यतस्त्रयंशा स्वयं सदेवेति वस्तुतो न सतः नैवार्थान्तरवदिदं प्रत्येकमनेकमिह सदिति। ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ध्रुव को अंश नहीं मानो और केवल उत्पाद व्यय को अंश मानो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अंश स्वयं सत स्वरूप है, वास्तव में सत के नहीं है। सत के अंश नहीं, स्वयं सत स्वरूप है, ऐसा कहा। उत्पाद भी सत स्वरूप है, व्यय भी सत स्वरूप है और द्रव्य भी। जैसे पदार्थांतर पृथक पृथक होने से अनेक होते, पदार्थांतर है अन्य अन्य पदार्थ पृथक पृथक है इसलिए वो अनेक होते हैं, उस प्रकार ये पृथक पृथक होकर अनेक नहीं है, किंतु स्वयं सत ही प्रत्येक अंश रूप है। उसी का भावार्थ बता रहे हैं। उत्पाद हाँ
सत ऐसा कर रहे मेरा, और वो सब कैसा है तो उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है और ध्रुवता भी सत्य है, ये सत्य तीनों प्रकार है, ऐसा ही होता है। तीन मिलकर एक नहीं हुए,
तीनों ही सत स्वरूप है। हाँ। ये बात बताएं, यहाँ सत उस रूप है। देखो ये भावार्थ में क्लियर करेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही सत के उस प्रकार अंश नहीं है जिस प्रकार की वृक्ष के फल पुष्प और पत्ते आदि होते हैं, ऐसे वो अलग अलग भिन्न भिन्न अंश नहीं है, ये कहना चाहते हैं। किंतु स्वयं सत ही उत्पाद आदि स्वरूप है, यानी सत कैसा है तो उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप है। ये तो हमने नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, परंतु वो अलग अलग भिन्न भिन्न अंश नहीं है उसके, सत इन तीनों रूप है। उसके लिए 220 और आगे वो समाधान चल रहा है। तत्र एतद् उदाहरणं यदुत्पादेन लक्ष्यमाणं सत् उत्पादेन परिणतम् केवलम् उत्पादमात्रमिह वस्तु। इस विषय में यह उदाहरण है कि यदि सत् उत्पाद का लक्ष्य बनाया जाता है तब उत्पाद रूप से परिणमन करता हुआ वह केवल उत्पाद मात्र है, यानी हम जिसको लक्ष्य करेंगे सत उस रूप है। उत्पाद का लक्ष्य करेंगे तो वह सत उत्पाद रूप दिखाई देगा। यहाँ लिखा ना, यदि सत उत्पाद का लक्ष्य बनाया जाता है तब उत्पाद रूप से परिणमन करता हुआ वह केवल उत्पाद मात्र है। सत है वह उत्पाद रूप दिखाई देगा। आगे कहते हैं 221 में, पेज नंबर 50, 221 श्लोक। ये जो शंका पूछी थी उत्पाद और ध्वंस को अंश कहो द्रव्य को मत कहो, उसके समाधान में ये बातें हो रही है कि जो सत है यानी तीनों अंश स्वयं सत स्वरूप है कहो, या जो सत है वो उत्पाद आदि रूप है ऐसा कहो, दोनों ही प्रकार से बता दिया। वो 221 में बता दे। अब क्या कहा अभी अभी हमने 220 में पढ़ा, सत उत्पाद का लक्ष्य बनाया जाता है तो वो उत्पाद रूपी परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। अब कहते यदि वा व्ययेन नियतम केवलम इह सदिति लक्ष्यमाणं स्यात् व्यय परिणतकम् सदिति व्ययमात्रम् किल कथम् हि तन्न स्यात्। अथवा यदि वह सत केवल व्यय का लक्ष्य बनाया जाता है तब व्यय रूप से परिणमन करने पर वह सत केवल व्यय मात्र क्यों नहीं होगा, तो कहते अवश्य होगा। यानी जिसका लक्ष्य करते हैं तो सत उस रूप परिणमन कर रहा है। अब 222 में कहेंगे द्रव्येण परिणतम सद्यदि वा द्रव्येण लक्ष्यमाणं स्यात् उत्पाद व्ययवदिदं स्यादिति तद्द्रव्यमात्रं सत्। द्रव्य परिणाम को धारण करने वाला सत यदि द्रव्य का लक्ष्य बनाया जाता है तब उत्पाद व्यय के समान वह सत द्रव्य मात्र है, जिसका लक्ष्य करेंगे सत उस रूप ही है, उतने मात्र ऐसा कहेंगे। अब ये तीनों श्लोकों का जो भावार्थ यहाँ कहते हैं, उपर्युक्त तीनों श्लोकों में इस बात का निषेध किया गया है कि उत्पाद व्यय द्रव्य सत से भिन्न है। वो तो सत स्वरूप ही है, उससे भिन्न तो चीजें नहीं है। अथवा सत के एक एक भाग होने वाले अंश है, यानी अंश है परंतु कैसे वो भिन्न भिन्न भाग है, जैसे वृक्ष में फल फूल पत्ते अलग अलग है वैसे ये अलग अलग नहीं है। साथ ही यह बतलाया गया है कि तीनों ही सत स्वरूप है और तीनों ही एक साथ होते हैं, परंतु जिसकी विवक्षा की जाए अथवा जिसका लक्ष्य बनाया जाए सत उसी स्वरूप है। सत ही स्वयं उत्पाद स्वरूप है, सत ही व्यय स्वरूप है और सत ही द्रव्य स्वरूप है। अब उसके लिए दृष्टांत दे रहे 223 में, संदृष्टिर्मुद्रव्यम सताघटे नेह लक्ष्यमाणं सत् केवलमिह घटमात्रम् असता पिंडेन पिंडमात्रम् स्यात्। दृष्टांत के लिए मिट्टी द्रव्य है, ये मिट्टी द्रव्य मानकर दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत मोटी स्थूल चीजों का दिया जाता है जो हमारे पहचान वाली चीज है, मिट्टी द्रव्य नहीं है, उद्गल द्रव्य होता। परंतु समझाने के लिए क्या कह रहे, दृष्टांत के लिए मिट्टी द्रव्य है, जिस समय वह मिट्टी विद्यमान घट रूप कर लक्ष्य होती है, यानी विद्यमान यानी जो अभी प्रेजेंट है उसमें वर्तमान में जो है कौन है तो घट रूप है, तो मिट्टी विद्यमान घट रूप कर लक्ष्य होती है उस समय वह केवल घट मात्र है। मिट्टी अभी वर्तमान में कैसे तो घट मात्र है, और जिस समय वह अविद्यमान पिंड रूप का लक्ष्य होती है तब पिंड मात्र है। तो कहते वो तो पिंड मात्र उसका व्यय हो रहा है, व्यय हो गया है और घट मात्र उत्पन्न हुए, तो व्यय का ही लक्ष्य करेंगे हम तो पिंड रूप का लक्ष्य होती है। तब मिट्टी कैसी थी तो पिंड मात्र, उसका व्यय हो गया। 224 में पढ़ेंगे पिंड ने मिट्टी का गोला लेते हैं, फिर वो चाक पर रख के उसको शेप देते हैं, वो पिंड कहे। अभी 224 में सेकंड लाइन में व्यू लिखा है, वो व्यू चाहिए व्युत्पाद आदि, हाँ व्यू लिखा है बक, एक्चुअली उत्पाद आदि चाहिए था परंतु व्युत्पाद किया उन्होंने। उत्पाद आदि चाहिए उसमें क्या लिखा है और दूसरा व्यू, अच्छा व्यू करना उसको, व्यू नहीं व्यू। यहाँ ब लिखा है उन्होंने, और पहले हमने एक बार व्यू का वो किया था। पेज नंबर कौन सा था, क्योंकि अभी दूसरी पुस्तक है तो हम जरा कंफर्म करेंगे तो अच्छा है। 215 में सेकंड लाइन में क्या है, व्यू लिखा है, अच्छा व्युत्पाद, यानी वो ठीक है व्युत्पाद। व्यू लिखा है उन्होंने, दूसरे संस्कृत पुस्तक है यहाँ पर अपने यहाँ, उत्पाद को ही व्युत्पाद लिखा है उन्होंने। व्युत्पाद हमने उत्पाद किया था, परंतु अभी जो लिख रहे हैं ना वहाँ उन्होंने व्यय लिखा है व्युत्पाद, उसको व्युत्पाद। हाँ देखो हम फिर पढ़ेंगे इसका अर्थ, नहीं अभी हम तो पढ़ना है श्लोक, अभी पढ़ना है 224 को पढ़ेंगे। यदि वा तुलक्षमाणम् केवलमिदं मृच्छ मृत्तिकात्वेन एवं चैकस्य सतो व्युत्पादादित्रयश्च तत्रांशः। यदि वह मिट्टी पने का ही केवल लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केवल मिट्टी मात्र है। मिट्टी पर तो नहीं समझ में आता है, सोने की बात करते तो जल्दी समझ में आता है। तो सोने का लक्ष्य करेंगे तो केवल सोना ही दिखाई दे रहा है। अब जो विद्यमान कौन सा विद्यमान आकार है, हार बने अच्छा तो हार तो सोना जो है तो केवल कैसा है, हार मात्र है। मैं व्यय किसका किया था, तो हमने वो तो कंगन था, तो कंगन का व्यय हुआ, तो व्यय रूप क्या दिखाई देता है, सोना, वो कंगन रूप था, वो कंगन रूप ही था तो उसका व्यय हुआ और हार का उत्पाद हुआ। अब कहेंगे केवल उसको सोने रूप देखना है तो भी सोने रूप ही दिखाई देता है, तो वो बाकी तो गौण हो जाते हैं, हमने उसको केवल सोने इस रूप में देखा। लेकिन यदि वह मिट्टी पने का ही केवल लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केवल मिट्टी मात्र है। इस प्रकार एक ही सत यानी द्रव्य, एक ही सत के उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसे तीन अंश होते हैं। पहले वो अंश यानी पृथक पृथक अंश का निषेध किया, सत के अंश नहीं है, सत उन रूप है ऐसा लिखा था। सत के तीन भिन्न भिन्न अंश करने से वो तीन अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न अंश नहीं है। जैसे वृक्ष में उसके अलग शाखाएं अलग है, पत्ते अलग है, फूल फल अलग है, ऐसा अलग अलग नहीं है। پورا ست اس روپ ہے، یہ کہنا چاہتے تھے. 225 نپنہ ستو ہی سرگ کین چدم شیک ماغ ماترین سمہارو وادرویم مرکشے فل پشپ پتر ونسیا. سمہار یعنی ناش، ایسا نہیں ہے کہ ست کا ہی کسی ایک بھاگ سے اتپاد ہو، یعنی دروے کا کسی ایک بھاگ کا اتپاد ہو رہا ہے اور اسی کا کسی ایک بھاگ سے وے ہو، یعنی دروے ایک بھاگ میں وے اتپاد روپ ہو رہا ہے، دوسرے بھاگ میں وے روپ ہو رہا ہو اور کسی ایک بھاگ سے دروے رہتا، ایسا نہیں ہے. جس پرکار کی ورکش کے ایک بھاگ میں پھل ہے تتھا ایک بھاگ میں پشپ ہے اور اس کے ایک بھاگ میں پتے ہیں، کنتو ایسا ہے کہ ست ہی اتپاد روپ ہے، ست ہی وے روپ ہے اور ست ہی دروے سوروپ ہے. اس لیے اتپاد وے دروے یوکتم ست اس روپ ہے. وہ آشا یہ ہے جیسے ورکش میں پھل پھول اور پتے پرتھک پرتھک رہتے ہیں، ویسے ہی ست میں اتپاد وے اور دروے پرتھک پرتھک نہیں رہتے. پھر شنکا 226 ننو چوتپادی ترایم اونشانامت کم انشنو واسیات اپی کم سد انشماترم کم اتھا انشماترم اسدستی پرتھگیتی چیر. کیا اتپادادک تینوں پرتھک پرتھک انشوں کے ہوتے ہیں اتوا اونشی کے ہوتے ہیں؟ یعنی ابھی کہتے ہیں اتپاد جو ہو رہے وہ اونشوں کے ہو رہے ہیں کیا اونشی کے ہو رہے ہیں؟ اتوا ست روپ بھن بھن اونش ماتر ہے اتوا اسات اونش روپ بھن بھن ہے، اس کا سمادھان 227 اور 28 میں سے پہلی گاتھا پڑھیں گے. 227 तन्नयतो नेकांतो बलवानिह खलु न सर्वथैकांतः सर्वं स्याद विरुद्धं तत्पूर्वं तद्विना विरुद्धं स्यात्. कहते अनेकांत बलवान है, है? उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर यानी जैन दर्शन में नियम से अनेकांत ही बलवान है, सर्वथा एकांत नहीं. खलु न सर्वथा एकांत है ना लिखा है. यदि ऊपर किए हुए प्रश्न अनेकांत दृष्टि से किए गए हैं तो सब कथन अविरुद्ध है. किसी दृष्टि से कुछ भी कहा जाए उसमें विरोध नहीं आ सकता और अनेकांत को छोड़कर केवल एकांत रूप से ही उपर्युक्त प्रश्न किए गए हैं तो अवश्य ही एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए अनेकांत पूर्वक सभी कथन अविरुद्ध है. वही कथन उसके बिना विरुद्ध है, यानी सर्वथा अगर मान लेते हैं तो वो विरुद्ध कथन हो गया. और वो अनेकांत में क्या होता है, दूसरा भी पक्ष है और उसका स्वीकार भी है वहां पर. किसी अपेक्षा से कथन, यानी अनेकांत कहते हैं कि किसी अपेक्षा से यह कथन सिद्ध होगा, परंतु सर्वथा मानेंगे तो ये बात ठीक नहीं है. 228 सेकंड लाइन पढ़ो नितिन भाई. नाप्यं शिनस त्रयम् स्यात् आगे क्या है? ता के ऊपर बिंदी है ना. हाँ, ता के ऊपर बिंदी लगाना सब लोग. हाँ, किमुताम ये मैंने मेरे पुस्तक में लिखा है इसलिए कंफर्म किया उनसे. मैं तो बुद्धि से किया है, अगर कंफर्म हो तो अच्छा है. देखो हम श्लोक पढ़ेंगे. केवल मंशानाम यह नाप्योत्पादो व्ययोपि न द्रव्यम नाप्यं शिनस्त्रयम् स्यात् किमुतं शेनं शिनो हि तत्त्रितयम्. केवल अंशों के ही उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होते हैं और न केवल अंशी के ही तीनों होते हैं, किंतु अंशी के अंश रूप से उत्पादादिक तीनों होते हैं। ऊपर पूछा था ना कि पृथक पृथक अंशों के होते हैं कि अंशी के होते हैं, तो केवल अंशों के ही नहीं होते, यानी मात्र अंशों के ही नहीं होते, मात्र अंशी के भी नहीं होते, किंतु अंशी के अंश रूप से उत्पादादि तीनों होते हैं। शंका 229 चोत्पाद ध्वंसौ स्यातामन्वर्थतोऽथ वाङ्मात्रा दृष्टविरुद्धत्वादिह ध्रुवत्वमपि चैकस्य कथमिति चेत्। एक पदार्थ के उत्पाद और ध्वंस भले ही हो, परंतु उस पदार्थ के द्रव्य भी होता है, यह बात वचन मात्र है और प्रत्यक्ष बाधित है। एक ही पदार्थ के उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों किस प्रकार हो सकते हैं, ये अवस्था के नहीं मान रहा है। पदार्थ और पदार्थ पूरा नाश होता है तो द्रव्य की किस बात की क्या ध्रुव रह गया, ऐसा कहना चाहता है। 230 समाधान सत्यम भवति विरुद्धम क्षण भेदो यदि भवेत् त्रयाणां हि अथवा स्वयं सदेव हि नश्यत्युत्पद्यते स्वयं सदिति। शंकाकार का उपयुक्त उपर्युक्त यानी ऊपर बताए हुआ कहना तभी ठीक हो सकता है अथवा उत्पाद व द्रव्य इन तीनों का एक पदार्थ में तभी विरोध आ सकता है जबकि इन तीनों का क्षण भेद हो। एक समय में उत्पाद हुआ फिर दूसरे समय में नाश हुआ फिर ऐसा होता तो उसमें को ऐसा कथन हो सकता था। अथवा यदि स्वयं सत ही नष्ट होता हो और सत ही उत्पन्न होता हो तब भी इन तीनों में विरोध आ सकता है, यानी पर्याय दृष्टि से उसको हम उत्पन्न ध्वंस कहते हैं। उनके पदार्थ को ही वो उत्पन्न और ध्वंस मानता है। तो 201 हाँ तो ये इसका कहना ठीक नहीं है। वापि कुतश्चित् किञ्चित् कस्यापि कथञ्चनापि तन्न स्यात् तत्साधक प्रमाणाभावात् यह सोप्य दृष्टांता। परंतु ऐसा कहीं किसी कारण से किसी के किसी प्रकार किंचित मात्र भी नहीं होता, यानी एक समय में उत्पाद हो दूसरे समय में व्यय हो तो कहते ऐसा कभी क्या कह लेंगे क्वापी क्वापी, यानी किसी के भी किसी कारण से कहीं पर भी कहीं क्वापी यानी कहीं पर भी कुतश्चित कुतः यानी किसी कारण से किंचित यानी किंचित मात्र भी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी कस्य भी यानी किसी के भी कथंचनापि किसी प्रकार से नहीं होता। उत्पाद भिन्न समय में होता हो व्यय भिन्न समय में होता हो और द्रव्य भिन्न समय में होता हो इस प्रकार तीनों के क्षण भेद को सिद्ध करने वाला तथा स्वयं सत ही उत्पन्न होता हो स्वयं सत ही नष्ट होता हो इसको सिद्ध करने वाला न तो कोई प्रमाण ही है और न कोई उसका साधक दृष्टांत ही है। ये सत को ही नष्ट होने वाला मानने वाले हैं ना क्षणिकवादी, जो सत का ही नाश हो जाता है फिर नया सत ही उत्पन्न होगा ऐसा कहेंगे। शंका 232 और 33 दो बात दो श्लोक है। ननु च स्वावसरे किल सर्गः सर्गैकलक्षणत्वात् स्यात् संहारः स्वावसरे स्यादिति संहार लक्षणत्वाद्वा द्रव्यं चात्मावसरे भवति द्रव्येकलक्षणत्तस्य एवं च क्षणभेदः स्याद्बीजाङ्कुरपादपत्वत् इति चेत् पादपेन वृक्ष स्यात् बीजाङ्कुर पादपत्ववत् इति चेत् ये कैसे उसको तोड़ कर पढ़ना तो उसका अर्थ ख्याल में आता है। शंका स्व अवसर या आत्मा अवसर यानी अपने अपने स्व समय में क्या कहते हैं उत्पाद अपने समय में होता है क्योंकि उसका उत्पत्ति होना ही एक लक्षण है। वे अपने समय में होता है क्योंकि संहार होना ही उसका लक्षण है। संहार यानी नष्ट होना व्यय होना। इसी प्रकार द्रव्य भी अपने समय में होता है क्योंकि उसका ध्रुव रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज अंकुर और वृक्षत्व चाहिए वृक्ष ने पादपत्व लिखा था ना ऊपर बीज अंकुर और वृक्षत्व क्योंकि वो द्रव्य पर है ना वृक्षत्व इनका भिन्न भिन्न लक्षण है और भिन्न भिन्न समय है क्योंकि ये शंका करके शंका में उसके जो गलती हो रही है वो ख्याल में आती। वृक्षत्व कब कहेंगे जब बीज है तब कहेंगे कि अंकुर है कहेंगे तब कहेंगे वृक्षपना कब है हमेशा है ना उसकी बीज अवस्था हो अंकुर अवस्था हो या और बड़ा हो वृक्षत्व तो है ही। ये क्या कहना चाहता है भिन्न तीनों के भिन्न भिन्न समय एक का उत्पाद है एक का व्यय ऐसा हम कहते हैं तो कहते हैं उसका समय ही भिन्न भिन्न यानी दोनों समय दोनों अवस्था में वृक्षत्व नहीं था तीसरे ही समय में हुआ ऐसा कहेंगे तो ये घटित नहीं होता। तो ये हमें तो अभी शंका पड़ रही है उसकी तो कहते हैं उनका लक्षण भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न समय है। उसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य का भी भिन्न भिन्न लक्षण है और भिन्न भिन्न समय है। यदि ऐसा कहो तो ये ऐसी शंका पूछे तो ये शंका कन्फर्म करना चाहते हैं मेरा कहना ठीक है ऐसा बोलो भावार्थ
भिन्न तो भिन्न भिन्न है
हाँ तो उसका कहना भिन्न भिन्न लक्षण है तो भिन्न भिन्न समय है कि नहीं लक्षण के द्वारा वो समय भिन्न बताना चाहते हैं। लक्षण तो भिन्न है ही है क्योंकि तीन अलग अलग बताए नाम ही तीन है तो उसके लक्षण तीन अलग हो गए। देखो भावार्थ भिन्न भिन्न लक्षण होने से तीनों का भिन्न भिन्न समय है क्या ऐसे पूछ रहा है ये लिखा ना प्रत्येक का लक्षण क्या है उत्पाद का उत्पत्ति होना व्यय का संहार होना और द्रव्य का ध्रुव रूप रहना। तो जैसे उसने उसके लिए उदाहरण बीज अंकुर वृक्षत्व ऐसा उसका उदाहरण लिया उसमें उत्पाद व्यय घटित नहीं किए। समाधान 234 में तन्नयतः क्षण भेदो न स्यादेक समय मात्रं त्यत् उत्पादादि त्रयमपि हेतो संदृष्टितोपि सिद्धत्वात्। लक्षण भेद होने से तीनों को भिन्न भिन्न समय में मानना ठीक नहीं है। भले लक्षण भेद तो है ही है समय एक है तीनों क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों का समय भेद नहीं है तीनों एक ही समय में होते हैं। यह बात हेतु और दृष्टांत से भली भांति सिद्ध है इसी का खुलासा नीचे किया जाता है। उन्होंने जो बीज वगैरह की बात की थी उसी को लेकर अभी आगे खुलासा करेंगे उसी का। 235 सेकंड लाइन में बीच वाला शब्द है ना सत्वाद व्यय लिखा वो व्यय चाहिए हिंदी में वो का ब और ब का वो बहुत करते हैं। पढ़ेंगे अथ तद्यथा हि बीजम बीजावसरे सदेव नासदिति तत्र व्ययो न सत्वा व्ययस्य तस्मात् सदंकुरावसरे। बीज अपनी पर्याय के समय में है। बीज पर्याय के समय बीज का अभाव नहीं कहा जा सकता। बीज पर्याय के समय बीज पर्याय का व्यय भी नहीं कहा जा सकता, किंतु अंकुर पर्याय के उत्पाद समय में बीज पर्याय का व्यय कहा जाता है, क्योंकि जब बीज है उस रूप विद्यमान तो उसका उत्पाद रूप है वो। जब उसी में से अंकुर हुआ तो कहते अंकुर का उत्पाद और उसी समय बीज का व्यय। अब 236 में बताएंगे और आगे। बीजावस्थायामपि न स्यादंकुर भवोस्ति वा सदिति तस्मादुत्पाद स्यात् स्वावसरे चांकुरस्य नान्यत्र। जो समय बीज पर्याय का है वह अंकुर की उत्पत्ति का नहीं कहा जाता, क्योंकि जब बीज उत्पाद रूप है उसकी पर्याय चल रही है तब अंकुर की उत्पत्ति नहीं है। बीज पर्याय के समय अंकुर के उत्पाद का अभाव ही है, इसलिए अंकुर का उत्पाद भी अपने ही समय में होगा, अन्य समय में नहीं। उसके अपने स्व अवसर यानी स्व समय पर उसका उत्पाद होगा। 237 यदि वा बीजांकुरयोर अविशेषात् पादपत्वमिति वाच्यम् नष्टोत्पन्नम् न तदिति नष्टोत्पन्नम् च पर्यायाभ्याम् ही। अथवा बीज और अंकुर इन दोनों को सामान्य रीति से यदि वृक्ष कहा जाए तो वृक्ष न तो उत्पन्न हुआ और न वह नष्ट हुआ, किंतु बीज पर्याय से नष्ट हुआ है और अंकुर पर्याय से उत्पन्न हुआ है। वृक्ष कहा उन्होंने, परंतु पादपत्व लिखा है ऊपर, वृक्षत्व उन्होंने वृक्ष कहकर उसी को बता दिया। ठीक है, अब हम 238 ये समझ में आती है बात। बीज हो या अंकुर हो वृक्ष तो है ही, वृक्ष की अवस्थाएं है। तो कहते दोनों ही समय में वृक्ष है ना, तो वृक्ष तो कायम है। बीज का व्यय हुआ, अंकुर का उत्पाद हुआ, वृक्ष तो कायम है। दोनों ही वृक्ष की तो दोनों को हम वृक्ष कह सकते हैं, इसलिए उसको वृक्षपना दोनों अवस्था में मौजूद है, वृक्षपना कहना चाहिए था। अब 238 सेकंड लाइन में ना उत्पन्न अंकुरेण च चाहिए, चम हुआ है पढ़ेंगे। आयातम न्याय बला एतद्यत त्रितयमेक कालम स्यात् उत्पन्नमंकुरेण च नष्टं बीजेन पादपत्वं तत्। हाँ, पादपत्व, ये पादपत्व ही लिखा है सब जगह, वृक्षत्व लिखा है। यह बात न्याय बल से सिद्ध हो चुकी है कि उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का एक ही काल है। वृक्ष का अंकुर रूप से जिस समय उत्पाद हुआ है उसी समय उसका बीज रूप से व्यय हुआ है। वृक्ष का उत्पाद वृक्ष का व्यय नहीं कह रहे, अंकुर रूप से उत्पाद और वृक्ष का बीज रूप से व्यय, और वृक्षपना दोनों अवस्थाओं में मौजूद है। ये वृक्षपना लिखा देखो, बराबर है ना, पादप का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष के लिए पादप शब्द है संस्कृत में, तरु है, वृक्ष है, पादप है, ये सब एकार्थवाची शब्द है। वो त्व लगाया था ना, इसलिए पहले उन्होंने केवल वृक्ष कहा था, वृक्षत्व हमने एक बार वो त्व जोड़ा था उसके अंदर 233 के श्लोक। अभी इसी का भावार्थ पूरा का समराइजेशन करेंगे। ऊपर के तीनों श्लोकों का सारांश इस प्रकार है। जो बीज पर्याय का समय है वह उसके व्यय का समय नहीं है। हम कहते ना पर्याय एक समय के लिए, तो एक समय में उत्पन्न हुई और उसी समय के अंत में जाके नष्ट हुई, ऐसा नहीं है। समय एक ही है, उसके दो भिन्न अंश नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। जिस समय उत्पाद है उस समय व्यय नहीं है। अभी हमने देखा ये इसका उत्पाद है, ये चार उंगलियां है, हम कहेंगे ये दूसरी उंगली की बात करें, इसका उत्पाद है, तो इसका उत्पाद है अपने समय पर, वो अपने समय पर पूरी उत्पाद उत्पाद रूप है। नेक्स्ट समय में दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, यानी अभी क्या है, इसका उत्पाद था, अब इसका उत्पाद हुआ, तो ये नहीं रही ऐसा कहेंगे, उसका व्यय हुआ कहेंगे। तो बीज पर्याय का समय है वह उसके व्यय का समय नहीं है, ऐसा मानने वाले है, यानी वो पढ़ते तो ऐसी मान्यता बहुतों की हो जाती है, एक समय में उत्पाद भी हुआ उसी समय ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी का सद्भाव और उसी का अभाव दोनों एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। किंतु जो अंकुर के उत्पाद का समय है वही बीज पर्याय के नाश का समय है। ये दृष्टांत मोटा होता है ना, आप कहेंगे कहां एक समय में बीज गया और अंकुर आया, जैसे मिट्टी के घड़े के वो पिंड और वो घट बना, उसमें बीच में कितनी छोटी छोटी पर्याय है, परंतु ये समझाना है इसलिए उसको ऐसे स्थूल उदाहरण लेके समझाते हैं। तो जो अंकुर के उत्पाद का समय है वही बीज पर्याय के नाश का समय है। ऐसा भी नहीं है कि बीज पर्याय और अंकुरोत्पाद इन दोनों के बीच में बीज पर्याय का नाश होता हो, यानी जैसे हमने यहाँ पता है ना एक ये उत्पाद रूप थी और इसका व्यय और ये एक समय में हुआ, तो ऐसा नहीं कि ये अभी उत्पाद है फिर इसका व्यय हुआ फिर इसका उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सामान्य से ऐसी मान्यता दिखाई देती, तो नष्ट हुआ तो उस समय कोई अवस्था ही नहीं माननी पड़ेगी, ये दोष आ जाएगा। तो कहते क्या फिर पढ़ेंगे इसको तीसरी लाइन, ऐसा भी नहीं है कि बीज पर्याय और अंकुरोत्पाद इन दोनों के बीच में बीज पर्याय का नाश होता हो, ऐसा मानने से लिखा देखो पर्याय रहित तो द्रव्य ठहरेगा, क्योंकि बीज का तो नाश हो गया अभी अंकुर पैदा नहीं हुआ है, तो उस समय के लिए द्रव्य में कोई पर्याय नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। उस समय कौन सी पर्याय मानी जावेगी, कोई नहीं, तो अवश्य ही पर्याय शून्य द्रव्य ठहरेगा। पर्याय के अभाव से पर्याय का अभाव स्वयं सिद्ध है, पर्याय का ही अभाव मानेंगे तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य परिणामी है, उसको पर्याय बिना का द्रव्य होता ही नहीं। इसलिए जिस समय अंकुर का उत्पाद होता है उसी समय बीज पर्याय का नाश होता है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि जो बीज पर्याय का नाश है वही अंकुर का उत्पाद है। इसका यह अर्थ नहीं है कि नाश और उत्पाद दोनों का एक ही अर्थ है, यदि दोनों का एक ही अर्थ हो तो जिसका नाश है उसी का उत्पाद कहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये जिसका व्यय है वो पूर्व पर्याय है, जिसका उत्पाद है वो उत्तर नेक्स्ट पर्याय है। नाश तो बीज का होता है और उत्पाद अंकुर का होता है, परंतु नाश और उत्पाद दोनों की फलित पर्याय एक ही है। ऐसा भी नहीं कि जो बीज पर्याय का समय है वही अंकुर के उत्पाद का समय है, यानी एक ही समय में दोनों का उत्पाद है, ऐसा भी नहीं है, यानी बीज का नाश हुए बिना ही अंकुर उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं मान सकते। ऐसा मानने से एक ही समय में दो पर्यायों की सत्ता माननी पड़ेगी और एक समय में दो पर्यायों का होना प्रमाण बाधित है, इसे हो नहीं सकता। इसलिए बीज पर्याय के समय अंकुर का उत्पाद नहीं होता, किंतु जो बीज पर्याय के नाश का समय है वही अंकुर के उत्पाद का समय है और बीज नाश तथा अंकुरोत्पाद दोनों ही अवस्थाओं में वृक्षपने का सद्भाव है। वृक्ष का जिस समय बीज पर्याय से नाश हुआ, देखो वृक्ष का नाश हुआ नहीं कहा, बीज पर्याय से नाश, यानी बीज पर्याय रूप से वृक्ष का नाश हुआ। पर्याय को साथ लेकर हम कहेंगे वृक्ष का नाश होता है पर्याय रूप से यानी बीज रूप से तो बराबर है, पर वृक्ष का ही नाश मानोगे तो ये तो गलत है। तो वृक्ष का जिस समय बीज पर्याय से नाश हुआ यानी बीज पर्याय रूप से नाश हुआ, उसी समय उसका अंकुर पर्याय से उत्पाद हुआ यानी अंकुर पर्याय रूप से उत्पाद हुआ। ये भाषा से वो बीज पर्याय से वृक्ष का नाश हुआ ऐसा नहीं समझना, उस रूप से। वृक्ष का सद्भाव दोनों ही अवस्थाओं में है, पहले भी वो वृक्ष की अवस्था थी अब भी वृक्ष की अवस्था है, इसलिए यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का एक ही समय है, भिन्न भिन्न नहीं। ये तात्पर्य निकला, ये गलत मान्यताओं का खंडन करके ये बात सिद्ध कर दी। जैसे एक मनुष्य मरकर देह हुआ, अब जो मनुष्य पर्याय का समय है वह तो मनुष्य पर्याय का है और जो देव पर्याय का समय है वह देव पर्याय का ही है, किंतु जो मनुष्य के नाश और देव की उत्पत्ति का समय है वह एक है। देखो अभी मरण के समय के नहीं, ये अभी है तो उसका वो जीवन का अंतिम समय है, जीवन का अंतिम समय नहीं, वहां वो मनुष्य है। उसके नेक्स्ट समय में क्या कहेंगे, उसको देव कहेंगे। तो मनुष्य पर्याय का व्यय कब हुआ, देव के उत्पाद के समय, नहीं तो ऐसे नहीं अभी मरा है नहीं, अभी मनुष्य का अंत हुआ फिर बाद में, ऐसा नहीं, अंत हुआ नहीं, उसका वो जीवन का अंतिम समय है। मरण का समय कहो या जीवन का अंतिम समय कहो एक ही बात है, उस समय तो वो मनुष्य रूप से है और जब देव हुआ तो उसका वो तो मनुष्य पर्याय का व्यय तभी कहा जाएगा। ऐसा पूछते बहुत ही गुणस्थानों की बात है, 11वें में मरण हुआ और वो देव में जाते हुए चौथे में जाता है तो कहाँ जाता है, यहाँ मनुष्य में चौथे में आता है, कैसे प्रश्न पूछते हैं। नहीं यहाँ तो मरण के समय तक यानी जीवन तक उसका 11वां गुणस्थान था, अंतिम समय में अंतर्मूर्त का है ना, और 11वें में उसका मरण हुआ यानी मनुष्य में उसका 11वां गुणस्थान था, देव में उत्पन्न होते ही चौथा गुणस्थान एक समय का, वह मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और देव पर्याय का उत्पाद हुआ। जो देव पर्याय का समय वह देव का ही है, जो मनुष्य के नाश और देव की उत्पत्ति का समय है वह एक है, ऐसे नहीं एक के समय में उसका नाश हुआ फिर दूसरे समय में उत्पाद, ऐसा नहीं है। और उस उत्पाद व्यय में उसी समय ध्रुव जीव न उत्पाद है न व्यय है किंतु ध्रुव है, यह सारे कथन का फलितार्थ है। यानी अभी तो हमारे हाय हाय मैं मर गया या हाय हाय कोई भी चला गया तो कहते हैं तो जीव कायम है ध्रुव है, एक पर्याय का व्यय हुआ है दूसरे पर्याय का उसी समय उत्पाद हुआ है। हम कहते हैं ही इज नो मोर, पर ही इज नो मोर एज मनुष्य। अभी 239 सेकंड लाइन में पादपत्व है ना लास्ट वर्ड, वो त्व यानी वो त डबल नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए। जैसे देखो 238 में लिखा है ऊपर पादपत्व, वैसे पादपत्वस्य सिंगल त चाहिए, वो डबल तो हुआ है। पढ़ेंगे श्लोक, अपिचांकुर सृष्टेर्य येव समया सबीज नाशस्य उभयोरप्यात्मत्वात् स एव कालश्च पादपत्वस्य। यही बात फिर बता रहे, जो अंकुर की उत्पत्ति का समय है वही समय बीज के नाश का है और अंकुर का उत्पाद तथा बीज का नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप है। इसलिए जो समय बीज के नाश और अंकुर के उत्पाद का है वही समय वृक्ष के द्रव्य का है। वृक्षत्व है ना, वृक्ष का द्रव्यपना, तो उसका वृक्षत्व हुआ। भाषा के हिसाब से उन्होंने उसको वृक्ष लिख दिया, परंतु वृक्षत्व बात है। 240
तस्मादनवद्यमिदं प्रकृतं तत्त्वस्य चैकसमये स्यात् उत्पादादित्रयमपि पर्यायार्थान्न सर्वथापि सतः।
इसलिए यह बात सर्वथा निर्दोष सिद्ध हो गई कि सत यानी पदार्थ के एक समय में ही उत्पाद आदि तीनों होते हैं, वे भी पदार्थ के पर्याय दृष्टि से होते हैं। पदार्थ के होते जब कहेंगे तो पर्याय रूप से हम द्रव्य को देखेंगे तब वो अंश होते हैं, तीनों होते हैं। पर्याय निरपेक्ष पदार्थ के नहीं होते, पर्याय को देखो ही मत तो हम उत्पाद वे कैसे कहेंगे उसमें। तो वृक्ष तो वृक्ष है कायम, परंतु बीज रूप से कहेंगे और अंकुर रूप से कहेंगे तो उसमें उत्पाद वे घटित हो। पर्याय दृष्टि से लिखा ना। 241
भवति विरुद्धं हि तदा यदा सतः केवलस्य तत्त्रयम् पर्याय निरपेक्षत्वात् क्षणभेदोऽपि च तदैव संभवति।
जिस समय उत्पाद आदि तीनों पर्याय निरपेक्ष केवल पदार्थ के ही माने जाएंगे उस समय अवश्य ही तीनों का एक साथ विरोध होगा और उसी समय उनके समय भेद की संभावना भी है। पर्याय को देखो ही मत, पर्याय निरपेक्ष मान लो अभी पदार्थ, अगर उसको मानेंगे तो एक ही समय में पदार्थ का उत्पाद और व्यय कैसे हो गया। ये जो मान्यता अलग चली है ना उसके लिए बता रहे।
242 यदि वा भवति विरुद्धं तदा यदाप्येक पर्ययस्य पुनः अस्त्युत्पादो यस्य व्ययोऽपि तस्यैव तस्य वै द्रव्यम्।
ये व्यय के बदले क्या लिखा है, व्यय लिखा वो क्योंकि मैंने उसको ठीक कराया परंतु पहले क्या गलत था वो दिख नहीं रहा। इसका अर्थ देखते हैं, अथवा तब भी विरोध होगा जबकि जिस एक पर्याय का उत्पाद है उसी का व्यय भी माना जाए और उसी एक पर्याय का द्रव्य भी माना जाए। एक ही पर्याय पर वो तीनों घटित करेंगे तो भी ये बात नहीं बन सकती, अनेक समय में उसका उत्पाद है और जिसका उत्पाद है उसी का व्यय है और उसी का द्रव्य। तो 243
प्रकृतं सतो विनाश केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः केनचिदन्येन पुनः स्यादुत्पादो ध्रुवं तदन्येन।
प्रकृत में ऐसा है कि किसी अन्य पर्याय से सत का विनाश होता है, पर्याय से लिखा यानी पर्याय रूप से, तथा किसी अन्य पर्याय से उसका उत्पाद होता है यानी एक ही समय में सत किसी पर्याय रूप से नष्ट होता है किसी पर्याय उस रूप से उत्पन्न होता है, वो पर्याय को उसके साथ लगा दिया और किसी अन्य पर्याय से ही उसका द्रव्य होता है। सांप्रत में वर्तमान में अपने चालू विषय में, अब उसके लिए संदृष्टि दृष्टांत बताएंगे। 244 में
संदृष्टि पादवत् स्वयं उत्पन्न सदंकुरेण यथा नष्टो बीजेन पुनर्भवमित्युभयत्र पादपत्वेन।
वृक्ष का दृष्टांत स्पष्ट है। जिस प्रकार वृक्ष सतरूप अंकुर से स्वयं उत्पन्न होता है, अंकुर से नहीं उस पर्याय से स्वयं उत्पन्न है ना, सद अंकुरेण बीज रूप से नष्ट होता है, यानी वृक्ष स्वयं बीज रूप से नष्ट होता है और वह वृक्ष पने से दोनों जगह ध्रुव है। वृक्ष पने से वृक्ष ध्रुव है, वृक्ष पने यानी वृक्षत्व, यानी वृक्ष ये द्रव्य की जगह नहीं है। सत रूप, सत किसको कहा, वृक्ष को, और वो अंकुर पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, वृक्ष अंकुर पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, वृक्ष ही बीज पर्याय रूप से नष्ट हुआ और वृक्ष वृक्षपने से कायम रहा, ये वृक्षपना लिया उसमें, वृक्ष का वृक्षत्व। सेकंड लाइन लास्ट में ना वाद्यत्वाद चाहिए, वाद्यत्वाद लिए ना, वहां वो कब करता वाद्यत्वाद पढ़ेंगे। नहि बीजेन विनष्ट स्यादुत्पन्नश्च तेन बीजेन, द्रव्यं बीजेन पुनः स्यादित्यध्यक्ष पक्ष वाद्यत्वा। ऐसा नहीं है कि वृक्ष बीज रूप से ही तो नष्ट होता हो, उसी बीज रूप से वह उत्पन्न होता हो और उसी बीज रूप से वह ध्रुव भी रहता हो। अभी एक ही पर्याय पर तीनों घटित कर रहे हैं, नहीं तो ये भी बात नहीं बनती कि बीज रूप से ही नष्ट हुआ, बीज रूप से उत्पन्न हुआ और बीज रूप से ही कायम रहा, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष बाधित है, प्रत्यक्ष में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है, बाधा आती है उसके अंदर।
नहीं माने एक सकता है कि नहीं अलग अलग
न, ही अलग अलग ही चाहिए,
अलग अलग
क्योंकि नहीं नाम का कोई वहाँ शब्द नहीं है। दो ये जो पहला शब्द है ना 245 का, उसमें अलग अलग लिखा है हाँ। नहीं बीज है हाँ, अलग अलग चाहिए। संस्कृत में नहीं हो, हिंदी का नहीं ऐसा नहीं हो, न ही
उत्पाद व्ययोरपि भवति यदात्मा स्वयं सदेवेति, तस्मादेतद्वयमपि वस्तु सदेवेति नान्यदस्ति सत।
उत्पाद और व्यय दोनों का आत्मा स्वयं सत ही है, दोनों का आत्मा ने दोनों का जो स्वयं सत ही है उसका स्व आत्मा ने, यहाँ जीव बुद्धि का, इसलिए ये दोनों ही सत वस्तु स्वरूप है। सत से भिन्न ये दोनों कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, यानी उत्पाद और व्यय ये सत रूप है, सत स्वरूप है, उससे भिन्न तो कोई चीज नहीं है।
पर्यायादेशत्वात् अस्त्युत्पादो व्ययोस्ति च द्रव्यम्, द्रव्यार्थादेशत्वात् नाभ्युत्पादो व्ययोपि न द्रव्यम्।
देखो पर्यायादेशत्वात्, पर्याय आदेशत्वात् यानी पर्यायार्थिक नय से उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है, पर्याय की दृष्टि, पर्यायार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से न उत्पाद है न व्यय है न द्रव्य, तो कहेंगे वो तो बस वहां तो भेद ही नहीं की ना, इसलिए उसमें ये उत्पाद व्यय और द्रव्य घटित नहीं है, तो कहेंगे वृक्ष तो वृक्ष है ऐसा कहेंगे, बीज रूप से देखेंगे तो ही वो घटित होगा, हम अवस्था की बात नहीं कर रहे, हम अवस्था को गौण करके द्रव्य को देख रहे हैं। तो उसमें ये बातें घटित नहीं हुई, इसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नैस। अब यहीं रुकेंगे हम, आगे क्या लिखा है भावार्थ के लिए अंत में दृष्टि परिज्ञान में पढ़ी है, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे पश्चात इसके अंत में, आज तो यहीं रुकेंगे हम।
जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतो।